اسلامی افکار کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، صدق اللہ العظیم۔ بزرگ اور دوستو، کیا ہی بہترین اور کیا ہی خوبصورت یہ دن ہے، ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد کانوں میں تکبیر کے زمزمے، خوبصورت آوازیں، اور پھر راستے چلتے ہوئے تکبیر کی آوازیں، قربانی کرتے ہوئے تکبیر کی آوازیں ہر طرف ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ تکبیر ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں، اذان ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ الفاظ تکبیر کے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت اس میں بھی زیادہ الفاظ تکبیر کے، اس کے باوجود اسی یہاں پر ان دنوں میں بھی تکبیر، اور وہ بہت کثرت کے ساتھ۔ عید کا خطبہ آپ نے سنا، اس میں کتنی مرتبہ، 16 مرتبہ تکبیرات پڑھی گئیں۔ نمازیں، اس میں کتنی مرتبہ عید کی نماز میں زائد تکبیرات پڑھی گئیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، تکبیر جس سے ہمیں ہمیشہ واسطہ پڑتا ہے، کسی کو بچہ پیدا ہو گیا، اس کے کان میں اذان، وہ بھی تکبیر سے شروع ہوتی ہے۔ ذبح کر رہے ہیں، سال بھر میں بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں پر بھی تکبیر۔ کہیں اوپر چڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر ان دنوں مزید تکبیر کس لیے رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی کہ ہم دل سے کہنے لگیں اور ہمارا دل گواہی دیں کہ سب سے اگر زیادہ بڑا کسی کا حکم ہو سکتا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ کسی کے حکم کو ترجیح دینی ہے، اللہ کے حکم کو دینی ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ تکبیر ہمیں بتاتی ہے، اور یوم عرفہ سے لے کر ایام التشریق کے آخر تک پورے 23 نمازوں کے بعد ہم کو تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف حجاج کرام اس وقت وہاں سے نکلنے کی تیاریوں میں ہیں، اور کل تک کچھ مہلت ہوگی، اور کل تک سب تمام کے تمام تقریباً نکل جائیں گے۔ نکلتے وقت طواف ودا کریں گے، اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو لوگ وہاں گئے ہوئے وہی جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی، جس کعبے کی طرف عمر بھر رخ کر کے نماز پڑھی ہے، ابھی وہاں پر پہنچے ہی تھے، دل میں ایک شوق تھا، اچانک وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، روح کانپ اڑتی ہے وہاں سے نکلنے کی یاد میں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہی کچھ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے اور مزید دلدوز منظر، غمناک منظر پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی، جس مکے میں آپ نے زندگی گزاری، وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا، جہاں پر صحابہ کرام بار بار عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، اور وہاں پر نمازیں پڑھتے تھے، وہاں پر ہی رہا کرتے تھے، آج جب وہ وہاں سے نکلے ہیں، نکلنے کے بعد ہر دن انہیں کعبے کی یاد ستا رہی ہے، کب ہم جائیں گے کعبہ، कब हम देखेंगे काबा, कब हम वहां पर पहुंच जाएंगे, अपने आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। एक साल गुजरता है, दो साल गुजरते हैं, तीन साल, चार साल, पांच साल, छह साल। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक से अपने शौक का इजहार करते हैं। फिर क्या होता है, अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्द बतलाते हैं, आज मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं, उमरा कर रहा हूं। कल आपने एक अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब को सुना था, आज हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब को सुनेंगे। फरमाते हैं ख्वाब देखा है, हमें उमरा करना है। सहाबा बेचैन हो जाते हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं और दिल और आंखें चमकने लगती हैं और फिर तैयारी करके एहराम बांधकर चल पड़ते हैं और हाथों में हदाया और हदी के जानवर साथ में हैं, चले जा रहे हैं और दिल में यकीन है कि आज हम उमरा करने वाले हैं। अचानक ये होता है, कुरैश रोक देते हैं, सहाबा परेशान हो जाते हैं, नबी ने ख्वाब देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम रोक दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से बातें करते हैं, 1400 सहाबा किराम आपके साथ हैं, ज़िकादा का महीना है, सन 6 हिजरी है। सहाबा किराम तड़प उठते हैं, यहां क्या हो रहा है। देखते ही देखते सहाबा को रोका जाता है और ऐलान होता है, इस साल उमरा नहीं होगा, आप उमरा अगले साल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाते हैं, सहाबा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, भाइयों अपनी जो कुर्बानी लाए हैं उसको जबह कर लो, हदी को जबह कर लो, अपने सरों को मुड़ा लो। लेकिन सहाबा बिल्कुल परेशान है, कोई हिल नहीं रहा है, जिस शौक से आए थे अब उसके लिए फिर एक साल इंतजार करना है। लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के मशवरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक कर लेते हैं और फिर अपनी हदी जबह कर लेते हैं। फिर सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में न चाहते हुए भी एक काम करते हैं, फिर वहां से उमरा किए बगैर लौट आते हैं। उस वक्त उनके दिल की क्या कैफियत थी, इसे गौर कीजिए। कोई ये कह सकता था, आपने ख्वाब देखा था और आपका ख्वाब सच्चा होता है, फिर आप उमरा किए बगैर कैसे आ गए। नहीं, जबान से कोई गलत बात नहीं निकलती है। ईमान पर हर्फ आने की अलामत होती है और पूरे सब्र के साथ वो चल देते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करना है, चाहे दिल जो कहे, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हमारा नफ्स क्या कहे, लेकिन अल्लाह क्या कहता है। नमाजों के ताल्लुक से भी हम सोचें, फजर में हम उठते हैं बसा औकात, लेकिन शैतान कहता है, नफ्स कहता है, अबे भाई सो जा, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेना। इस तरह करते करते नमाज कजा हो जाती है। कोई अल्लाह का हुक्म हम अदा करने चलते हैं लेकिन नफ्स कहता है, अरे अभी क्या है, अभी तेरी उम्र क्या है, बाद में कर लेना, फिर वो चीज वो हुक्म करने से रह जाता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें इस वाकये के जरिए से ये पैगाम लेना है कि हमें अल्लाह के हुक्म पर चलना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी पूरी इम्तिहानात से भरी हुई थी, उन्होंने क्या किया, किस तरह से तमाम इम्तिहान में वो कामयाब हो गए, तो अल्लाह ने उनको इमामुल मुहिदीन बनाया। आज दुनिया में कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिनकी इतने ज्यादा तादाद में इतने मजाहिब उनको मानते हो। यहूदियत हैं, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई हैं, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी मानते थे, और हम और आप तो मानते ही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारी अब्बा तुम्हारे अब्बा उनकी मिल्लत को थामे रहो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है ये जो कुर्बानी है इसकी तारीख क्या है। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी? सबसे पहले जो कुर्बानी दी गई रुए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जन हाबिल और काबिल ने दी। उनका वाकया बहुत लंबा है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हाबिल ने अमल किया और काबिल हसद में पड़ा रह गया और उसने हसद के नतीजे में अपने बाही उसको ही कत्ल कर डाला। उसके बाद एक आदम अलैहि सलाम का बेटा होते हुए उसको ये पता नहीं था कि मुर्दे को किस तरह से दफन किया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला कव्वे को भेजते हैं और उस कव्वे के जरिए से उन्हें पता चलता है कि किस तरह से लाश के साथ किया जाता है और उसी तरह से करता है। जब हाबिल ने अपने भाई की बात सुनी कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा तो हाबिल कहते हैं इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। हाबिल और काबिल दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करते हैं और फिर अल्लाह ताला हाबिल की कुर्बानी जो अच्छे होते हैं अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं उनकी कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। हाबिल कहते हैं इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकी की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। पहली कुर्बानी उन्होंने दी और उसी वक्त से ऐलान तकवा है कुर्बानी कबूल है, अल्लाह का खौफ है कुर्बानी कबूल है, अल्लाह के लिए की जा रही है कुर्बानी कबूल है। अगर उसके अंदर नामोनमूद आ गया, उसके अंदर कोई और जज्बा आ गया तो फिर वो कुर्बानी कबूल नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम और आप भी अपने दिलों का जायजा लें और अपने दिल में अपनी इखलास का जायजा लें, नियत को सही बनाएं और नियत को दुरुस्त करें ताकि हमारी कुर्बानियां कबूल हों, हमारी इबादतें कबूल हों और फिर वो इबादतें हमें काम आएं और फिर हम जब आखिरत में अल्लाह के हुजूर हाजिर हों बहुत सारा सवाब लेकर वो कुर्बानियां आएं, अपने बालों को लेकर आएं, अपनी सींगों को लेकर आएं, अल्लाह ताला उसके बदले हमें ढेर सारा सवाब अता करें। मेरे बुजुर्गों, इसकी तरफ तवज्जो देना है और तंजीम वालों की रहनुमाई में पूरे मोहताज रहकर काम करने की तौफीक अता फरमाएं ताकि अमन अमान बहाल रहे और किसी तरह के कोई हालात इस तरह से पेश ना आए जो हमारे लिए परेशानी का बाइस हो। अल्लाह ताला ये ईद सबों के लिए बहुत बहुत मुबारक फरमाए और इस ईद में अल्लाह ताला तमामों के लिए खुशियां नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।